जब से अर्जुन ने तारा की प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताया था, तब से तारा को अंदर ही अंदर गिल्ट हो रहा था। वो उस दिन से डर रही थी जब ध्रुव के सामने सच आने वाला था। ध्रुव पहले से ही उससे इस वजह से नाराज था कि उसने ध्रुव की फीलिंग्स को जानते हुए भी उससे झूठ बोला। अब अगर ये फेक प्रेगनेंसी का सच सामने आता तो ध्रुव की नफरत और भी बढ़ जाती। सबको तारा की बात पर आसानी से यकीन हो गया था, लेकिन युग को नहीं। जब अर्जुन ने तारा की प्रेगनेंसी को अनाउंस किया था, तब युग तारा के हर एक एक्सप्रेशन को गौर से देख रहा था। तारा का चेहरा देखकर भी उसने पता लगा लिया था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना सही समझा। अगली सुबह जब तारा की नींद टूटी तो उसने देखा ध्रुव उसी के पास चेयर पर बैठे बैठे सो गया था। अरे नहीं, अगर ये इसी तरह से केयर करेगा तो मुझे इससे और प्यार हो जाएगा और साथ ही मुझे और पछतावा होगा कि मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तारा ने भौहें सिकोड़कर मन ही मन कहा। ध्रुव का चेहरा देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वो इस वक्त कितना अनकंफर्टेबल होकर सो रहा है। ऊपर से जो भी चल रहा था उसके बाद उसे ठीक से आराम करने का भी मौका नहीं मिला था। तारा ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखा तो वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया था। उसने जल्दी से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? तारा ने ना में सिर हिला दिया था। वो बोली, तुम आराम से बेड पर सो जाओ। नहीं, उसका टाइम नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, ऊपर से तुम्हारी प्रेगनेंसी के चलते सब डिले होने वाला है, ध्रुव जल्दी से कुर्सी से उठते हुए बोला। क्या मतलब? तारा ने उलझन भरे स्वर में पूछा। मतलब ये कि मैंने डैड से बात कर ली है और फिलहाल हम उन तीनों पड़ावों पर नहीं जाने वाले हैं। मैं इस हालत में तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता हूँ, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता निकाला है, ध्रुव ने तारा को समझाया। और वो दूसरा रास्ता क्या है? तारा ने तुरंत पूछा। पहले उन तीनों पड़ावों को मैं ढूंढ लूंगा और वहां के हर खतरे को दूर करके तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। तुम बस घर पर बैठकर आराम करना, बाकी मैं देख लूंगा। तुम्हारी पूरी प्रेगनेंसी और बच्चे के थोड़ा बड़े होने तक इंतजार करेंगे तो काफी देर हो जाएगी। मैं डैड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, ध्रुव ने तारा को सब कुछ बता दिया था। वो देर रात तक तारा के पास बैठकर यही सोच रहा था कि किस तरह उसे तारा को भी खतरे में ना डालना पड़े और युग का भी ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। जैसे जैसे ध्रुव बता रहा था, तारा के मन का पछतावा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली थी, वो ध्रुव से नजर तक नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, इसे छोड़ो, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगा। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद हम तुम्हारे सारे जरूरी टेस्ट करवा लेंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, ध्रुव ने तारा से पूछा। तारा ने गहरी सांस ली और ध्रुव की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे यही चाहिए कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, रही बात मेरे टेस्ट और बाकी कामों की तो वो मैं खुद देख लूंगी। अभी सिर्फ शुरुआत है और मैं वीक नहीं हूँ जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए तुम पर डिपेंडेंट रहूँ, ध्रुव ने उससे ज्यादा जिद नहीं की और हाँ में सिर हिला गया था। तारा वॉशरूम जाने का कहकर उठी और बाथरूम में जाकर बैठ गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ रखा था। ये भी अजीब है, कल रात तक अच्छा खासा गुस्सा कर रहा था, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता था और ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था जिसे सुनने के बाद कानों से खून निकल आए, और अचानक इतना प्यार क्यों जता रहा है? अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं भी हूँ तो क्या ये नॉर्मली मुझे इतना प्यार नहीं जता सकता? तारा ने दांत पीसते हुए कहा। उसे गुस्सा आ रहा था कि ध्रुव का ये बदलाव उसकी प्रेग्नेंसी का सुनकर आया था। जहाँ एक तरफ ध्रुव और तारा की जिंदगी एक झूठ के सहारे ही सही कुछ सामान्य हुई थी, तो वहीं इस वक्त राणा मेंशन के बेसमेंट में बने मीटिंग रूम का माहौल काफी गंभीर था। सारा और शब्द काम से वापस लौट चुके थे और आते ही उन्हें मान्या और योग के बीच हुए हादसे के बारे में पता चला। शब्द हरलीन के साथ योग से मिलने के लिए गया था, उसके पीछे से सारा मीटिंग रूम में अलीजा और वीर के साथ थी। वो तीनों मिलकर फुटेज देख रहे थे। अपनी आंखों के सामने मान्या को इतनी बेरहमी से योग को घायल करते देखकर अलीजा की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई थी, तो सारा ने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था। उन्होंने आगे की फुटेज भी देखी थी और उससे पहले मान्या के कमरे में क्या हुआ था वो भी उन्हें अच्छे से पता था। मान्या ने खुद ही अपने आप को घायल किया था और प्रतिभा उसका साथ देते हुए मदद के लिए बाहर आई थी। अलीशा ने ही उनकी हेल्प की थी और जब वो मान्या को अस्पताल ले जाने लगे तो इस बीच योग वहां पहुंच गया था। योग और मान्या के बीच हुई झड़प में अलीजा बीच में आई थी और उसने एक झटके में मान्या का गला काट दिया था। अलीशा को मान्या की हेल्प करते देखकर अलीजा दांत भींचते हुए बोली, कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? सारा और वीर ने तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा। सारा ने अलीजा को डांटते हुए सख्त आवाज में कहा, उसे बेवकूफ कहना बंद करो, वो तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसने ये प्रूफ भी किया है। हाँ तो इतना इमोशनल फूल कौन होता है? क्या उसे पता नहीं कि मान्या राणा कौन थी? उस जैसी औरत को तो अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी मदद नहीं करनी चाहिए, अलीजा ने सिर हिलाकर कहा। वीर ने तुरंत अलीशा का पक्ष लेते हुए कहा, वो कोई इमोशनल फूल नहीं है, बस ऐसा समझ लो कि वो हमारी दुनिया से दूर है और इसी वजह से उसके अंदर की इंसानियत आज भी जिंदा है। हाँ तो तुम उसका साथ देते हुए इंसान क्यों नहीं बन जाते? अलीजा तंज कसती हुए बोली। इससे पहले कि उन दोनों के बीच की बहस और बढ़ती, सारा ने उनके बीच में दखल देते हुए तेज और सख्त आवाज में कहा, बस भी करो तुम दोनों, इस वक्त टॉपिक ये नहीं होना चाहिए कि अलीशा ने क्या किया था। द पॉइंट इज दैट मान्या की केयरगिवर कहाँ है,
इतने टाइम से हमारे घर में रह रही थी और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया कि वो हमारे दुश्मनों में से एक है। अलीजा ने आंखें घुमाई और जवाब में कहा, अगर मैंने कुछ कहा तो आप दोनों मुझ पर ही गुस्सा करोगी। मानिया के आसपास काम करने वाले लोगों के बारे में जानने में वैसे भी किसी को इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बैकग्राउंड और उसे हायर करने वाली आपकी लाडली इंसानियत से भरी हुई बेटी अलीशा थी। सारी गलती उसी की थी, लेकिन नहीं, आप लोग कुछ नहीं कहने वाले हो। अच्छा, उस पर ब्लेम डालना बंद करो, हमें प्रतिभा को ढूंढना जरूरी है। पता नहीं वो इस घर से कितने हाज लेकर गई है। सारा ने टॉपिक को फिर से प्रतिभा की तरफ खींच लिया था। वीर ने गहरी सांस ली और सारा की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, ध्रुव के कहने पर मान्या की डेड बॉडी ले जाने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा था। वो पहले ही भाग चुकी थी और मैंने फुटेज में देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने ही उसकी हेल्प की थी। जरूर वो पहले से ही उसके साथ मिला हुआ था। उन लोगों ने जो टैक्सी हायर की थी, मैंने उसके भी नंबर निकलवाए थे। मैं टैक्सी ड्राइवर से मिला तो उसने बताया कि उसने उन लोगों को एक सुनसान इलाके में छोड़ा था। ओ नो डाउट, उसके बाद वो कहाँ गए होंगे। पता नहीं अब कौन सा दुश्मन हमारे खिलाफ सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, सारा ने परेशान स्वर में कहा। वीर और अलीजा भी चुप हो गए थे। राणा फैमिली में ज्यादातर सभी एडल्ट थे और अपने साथ सिक्योरिटी लेकर चलते थे। फैमिली माफिया की दुनिया में इन्वॉल्व होने की वजह से अच्छी खासी ट्रेन थी और उन्हें किसी बात का डर नहीं था। दिशा हमेशा युग के इर्द गिर्द रहती थी। ऐसे में अगर सबसे ईजी टारगेट सिर्फ याशी ही थी, जो युग को जान से भी ज्यादा प्यारी थी। मान्या की लूम की पुरानी फुटेज चेक की तुमने वीर, कुछ और पता चला, सारा ने परेशान लहजे में पूछा।
वीर ने हल्का सिर हिला दिया था। वो धीमी आवाज में बोला, युग अंकल पहले भी मान्या से मिलने उनके कमरे में गए थे। ये ध्रुव की शादी की बात है और उसकी शादी के फंक्शंस के दौरान याशी उनके कमरे में गई थी। उसने वहां काफी टाइम भी बिताया था और याशी के बारे में उन्हें सब पता है। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, वो याशी को ही टारगेट करने का सोच रहे थे। तभी युग ने बिना सोचे समझे मान्या की जान ले ली। याशी अभी भी सेफ नहीं है। प्रतिभा अब तक उसके बारे में हमारे दुश्मनों को बता चुकी होगी, सर बोले। अगर याशी को कुछ हुआ तो मैं सबको काट कर रख दूंगी, अलीजा दांत भींचते हुए बोली। थोड़े ही टाइम में वो याशी के काफी क्लोज हो गई थी। वो काम करने के लिए तुम्हारे चाचू काफी हैं, युग हॉस्पिटल में है, उसके डिस्चार्ज होने से पहले हमें मामले को सुलझाना होगा। वीर, तुम प्रतिभा को ढूंढना जारी रखो और अलीजा, तुम एक मिनट के लिए भी याशी को अकेला नहीं छोड़ोगी। सारा ने उन्हें उनका काम समझा दिया था और फिर मीटिंग रूम से बाहर निकल आई थी। सारा के जाने के बाद वीर और अलीजा ने एक दूसरे की तरफ घूरते हुए देखा। वीर ने कुछ पल बाद अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम अलीशा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मेरी प्रॉब्लम ये है कि उसके सॉफ्ट हार्ट के चलते हम लोग हमेशा मुसीबत में आ जाते हैं। अगर वो उस वक्त मान्या की हेल्प के लिए नहीं जाती तो सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को बाहर तक नहीं निकलने देते और अपने आप चाचू सब हैंडल कर लेते। लेकिन नहीं, उसे तो महानता की देवी बनना है। आज चाचू इस हाल में है तो उसकी एक वजह अलीशा भी है। अलीजा अभी भी सारा दोष अलीशा पर डाल रही थी और बोलते वक्त उसका चेहरा वीर की तरफ था। वीर ने उसकी बात पर सार्कास्टिकली सिर हिलाया और जैसे ही सामने की तरफ देखा तो उसके कदम वहीं पर रुक गए थे। उनके सामने अलीशा खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। उसने अलीजा की सारी बातें सुन ली थी। तो तुम लोगों को लगता है कि मेरी वजह से चाचू हॉस्पिटल में है, अलीशा ने सिसकती आवाज में कहा। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, वीर ने अलीशा को समझाना चाहा, लेकिन तभी अलीजा बीच में बोली, हमें इंक्लूड मत करो, तुम्हारा पता नहीं लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। अगर ये उस दिन बीच में नहीं आई होती तो चाचू का वो हाल नहीं होता। अलीशा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो वहां एक पल के लिए भी नहीं रुकी और रोते हुए जाने लगी। वीर उसके पीछे जा रहा था। जाने से पहले उसने अलीजा की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, यू नो वॉट, तुम बहुत बुरी हो। जैसी तुम्हारी बातें और हरकतें हैं, मैं सारा आंटी को यही कहने वाला हूं कि तुम्हें याशी के पास छोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, कहीं वो भी तुम्हारी तरह ना बन जाए। तुम, अलीजा पीछे से पैर पटकते हुए चिल्लाई, लेकिन उसकी बातों को अनसुना करके वीर वहां से चला गया था। समझता क्या है ये अपने आप को? ये वही वीर मलिक है जो इमोशनल लोगों से चिढ़ता था। अचानक इसे प्यार हो गया तो इमोशंस कमजोरी नहीं होती है का राग अलापने लगा, अलीजा ने गुस्से में कहा। अलीजा सारा के बताए हुए काम पर लग गई थी। वहीं अस्पताल में तारा अकेले ही टेस्ट करवाने के लिए अर्जुन के पास पहुंची। उसके चेहरे पर मायूसी के भाव थे। अर्जुन के पास जाते ही तारा बोली, आई रिक्वेस्ट यू कि आप रिपोर्ट में कुछ भी इधर उधर मत करना। एक नज़र में प्रेगनेंसी सही से डिटेक्ट नहीं होती है तो आप बहाना बना सकते हैं। अगर अब आपने झूठ बोला तो डॉक्टर सिंघानिया, मैं उसकी आंखों में देर तक देख नहीं पाऊंगी। लेकिन उसके बाद वो तुमसे इस तरह नफरत करने लगेगा, क्या तुम सब कुछ सह पाऊंगी? अर्जुन ने कुछ भी करने से पहले तारा से दोबारा पूछा। लेकिन इस वजह से वो मुझसे प्यार से बात कर रहा है, वो वजह भी तो झूठी है ना, ये मुझे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। आप बस सही रिपोर्ट ही ध्रुव को दीजिएगा, बाकी मैं देख लूंगी, तारा ने इतना ही कहा और फिर नर्स के आने पर टेस्ट करवाने के लिए उसके साथ चली गई थी। तारा ने खुद को मन ही मन ध्रुव की नफरत सहने के लिए तैयार कर लिया था।
बेड पर लेटते वक्त उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े थे। वो मन ही मन बोली, पिछले कुछ घंटे बहुत अच्छे से बीते और जानती हूँ कि ये वजह झूठी थी, पर ये भी जानती हूँ कि अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो तुम मेरा इतने ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते। पर मैं तुम्हें अब और किसी धोखे में नहीं रखना चाहती ध्रुव। तुम्हारा प्यार नहीं कमा सकती, पर मुझे और नफरत नहीं चाहिए। तो तारा ने खुद ही ध्रुव को सब बताने का डिसीजन ले लिया, और देखा जाए तो ये बिल्कुल अच्छा फैसला किया है उसने। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं और देखते हैं ध्रुव का क्या रिएक्शन निकल कर आता है। आज कहानी के 400 भाग पूरे हो गए हैं। इसे यहाँ तक पढ़ने वालों का शुक्रिया।